हरे कृष्णा। तो प्रिय भक्तों, आइए पहले मन को एकाग्र करें। हरे कृष्णा। तो मन को एकाग्र करने के लिए आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और थोड़ा सा सांस को एकाग्र करें और मेरे पीछे दोहराइएगा। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए मेरे पीछे आप दोहराएंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। ओ कृष्णा, कोई कुर्सी ऐसे नहीं है ऊपर बैठने में सबको देख सकूं? मैं थोड़ा नीचे हूँ बहुत। हाँ, कुर्सी है कोई? थोड़ा सबका दर्शन हो जाए ना, हम आपको देख नहीं रह सकते। नहीं तो ये तुलसी महारानी तो ये भी अच्छा है। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
प्रसन्न।
हरे कृष्णा
कृष्णा
हरे हरे,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे राम,
हरे राम हरे राम,
राम राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे।
तो आइए भगवद गीता के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नाम है गीता का संक्षेप में गीता, संक्षेप लिखा है कंटेंट ऑफ गीता समराइज, गीता के सारी गीता का संक्षेप में। संक्षेप कहते हैं थोड़े शब्दों में सारी गीता को समझाना। और दूसरे अध्याय को जो गीताएं, दूसरी गीता आपको कहीं मिलेगी उसमें लिखा हुआ मिलेगा सांख्य योग। तो ये भगवान गुरुजन जब किसी को सिखाते हैं तो पहले छोटी सी थोड़े शब्दों में बताते हैं और देखते हैं कि इसको सीखने का शौक है और कुछ पूछेगा तो और ज्यादा समझाएंगे। तो इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान ने सारी गीता की थोड़ी थोड़ी बातें सूत्र रूप में अर्जुन को बताई। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अर्जुन में जिज्ञासा पैदा हुई, तो अर्जुन ने पूछा और भगवान विस्तार करके बताते गए। तो अच्छे सिखाने वाले में ये गुण होना चाहिए कि वो आप में जिज्ञासा पैदा करें, आप पूछो जानने के लिए, आपकी इच्छा हो तब वो दिल खोल के बताएगा। तो पहले अध्याय में जो कुछ भी हुआ उस सारे को संजय दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में स्लो मोशन में दिखाता है। देखा है टीवी में कभी क्रिकेट में कोई आउट हो जाता है तो वो टीवी को उधर फिक्स करके दिखाते हैं कितना बाल कैसे गया, कैसे लगा, ये LBW हो गया, तो दिखाते हैं उसको स्लो मोशन कहते हैं। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने जो कुछ कहा भगवान को, उसके कहने के बाद अर्जुन को क्या हो गया, उसके ऊपर कैमरा फिक्स करके और संजय बोलता है पहला श्लोक दूसरे अध्याय का, तं तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम विशीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय कहता है उसके बाद, किसके बाद, जब अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया, लड़ने से इनकार कर दिया और उपस्थ और नीचे आके बैठ गया, भगवान के सामने आके नीचे बैठ गया। तम तथा, तथा का मतलब उसके बाद, उसके बाद क्या हुआ, कृपया आविष्टम, क्यों अर्जुन धनुष नीचे रख दिया, क्यों आगे आकर बैठ गया, बोला उसके ऊपर कृपा आ गई, उसके ऊपर कृपा का आवेश हो गया, कृपया आविष्टम, कृपा आ गई उसके ऊपर कहीं से। कृपा किसको कहते हैं, अपने रिश्तेदारों के दुख को देखकर दिल में जो मोह होता है उसका नाम कृपा है। कृपा और दया में अंतर यह है, अपने रिश्तेदारों के दुख को देखेगा उसको कृपा कहते हैं, दूसरे लोग जिसको नहीं जानता है उसके दुख को देखेगा उसको दया कहते हैं। जिसको नहीं जानते हैं और हम भला करना चाहते हैं वो दया है, लेकिन अपनों का मोह के कारण हम अपने कर्तव्य को नहीं करते हैं तो वो कृपा हो गई। तो अर्जुन को कृपा का आवेश हुआ। तो कैसे, आपको कैसे पता लगा कि इसको कृपा हो गई, कोई पूछे संजय आपको कैसे पता लगा इसको कृपा हुई, बोला अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, अश्रु आंखों में से आंसू बह रहे हैं, पूर्ण ईक्षणक आंखें लबालब आंसुओं से भरी है, आंसू गालों के ऊपर गिर रहा है, अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, शरीर में अर्जुन के कृपा के कारण, उसके कृपा का उसके ऊपर ऐसा प्रभाव हुआ है कि आंखों के अंदर से आंसू बहते हुए दिख रहे हैं। अश्रु पूर्णा कुलेच विषीदंतम, और अर्जुन को मन में विषाद हो गया है। विषाद का अर्थ होता है, विषाद का अर्थ होता है कोई ऐसा कष्ट, कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसा दुख जिसका निवारण हम नहीं कर सके। जैसे बीमार हो गया, बुखार आ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमको किसी और की सहायता की जरूरत पड़ती, डॉक्टर के पास जाएंगे तब हमारी बीमारी जाएगी। तो मानसिक रोग विषाद है, उसमें किसी का सहायता चाहिए तब उससे वो निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता। तो अर्जुन को क्या हो गया, बोला विषाद हो गया। अब अर्जुन को हुआ विषाद, और अर्जुन किसके सामने जाके रोया, आंखों में आंसू अर्जुन के आ रहा है, किसके सामने, भगवान श्री कृष्ण के सामने। तो अर्जुन का विषाद तो हुआ, बहुत खराब बात है, लेकिन वो गया कहां, भगवान कृष्ण के सामने, और वहां रोने लगा। तो अर्जुन का ये विषाद भी योग हो गया, तो इसका नाम विषाद योग हो गया। और जब विषाद हुआ और भगवान के पास गया, तो भगवान क्या देता है, जब हमको विषाद हो, दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, कष्ट हो, और भगवान के सामने जाके रोए, तो भगवान देता है प्रसाद। आपको जब विषाद होगा और आप भगवान के चरणों में जाकर बैठोगे तो भगवान का प्रसाद मिलेगा। और दूसरा आधा अध्याय भगवान का प्रसाद है। अर्जुन के विषाद को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसाद दिया। प्रसाद किसको कहते हैं, भगवान की दया। प्रसाद का मतलब है दया, भगवान जब दया करते हैं तो उसको प्रसाद कहते हैं। प्रसाद सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, गीता में लिखा है प्रसाद सर्व दुखानां, सब दुखों से प्रसाद आपको निकाल के हानि नहीं होने देगा, आपका नुकसान नहीं होने देगा। प्रसाद सर्व दुखाने हानि रस्य उपजाए थे, प्रसन्न चेत सो, आपका चित एकदम प्रसन्न हो जाएगा। तो भगवान दुख का निवारण करते हैं, कब, जब उसके सामने कोई जाकर रोता है, जब जाके उसके सामने कोई रोता है। अब जब ये शब्द कहे ना संजय ने, तो धृतराष्ट्र तो अंधा था, उसने कहा अर्जुन रो रहा है, उसको विषाद हो गया, हथियार छोड़ दिए, तब अब तो हमारे बेटे को कोई नहीं हरा सकता। अर्जुन ही तो एक था पांडवों की तरफ से, वो अगर लड़ता तो हमारे बेटे को कुछ खतरा था, लेकिन अर्जुन ही नहीं लड़ेगा। तो धृतराष्ट्र थोड़ा सा मुस्कुराया, अच्छा हुआ अर्जुन को विषाद हो गया, लड़ेगा नहीं, मेरा बेटे का राज बचा रहेगा। संजय ने देखा, अरे ये खुश हो रहा है, मेरा मालिक तो गलत फहमी में है। तो इसलिए संजय ने बुद्धिमानी से एक शब्द कहा, विषीदंतम के बाद बोला विषीदंतम इदम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन ने ये शब्द बोले, मधुसूदन जब संजय ने कहा, का मधुसूदन कुछ बोलने जा रहा है महाराज, इसका नाम मधुसूदन है, इसने मधु राक्षस को मारा था, और ये मधु मीठी बातें करता है, मधु है ये, और ये अर्जुन के मन में जो इस वक्त मधु जैसा राक्षस आ गया है ना कृपा के कारण, ये थोड़ी देर में मार देगा और अर्जुन लड़ेगा। महाराज तुम खुश मत हो, ये मधुसूदन यहां इसलिए बोला है कि भगवान श्री कृष्ण एकदम बोलना शुरू किया दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, क्लेव्यम मा समगम पारथ, क्लेव्यम मा समगम, ये तुम्हारे ऊपर नपुंसकता अर्जुन कहां से आ गई, कायरता कहां से आ गई, तुम कहां से अनार्य जैसी बात, अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म, अर्जुन तुम आर्य हो के अनार्य जैसी बात कर रहे हो, तो अर्जुन ने कहा अनार्य तो मुझे स्वर्ग तो मिलेगा ना, बोला स्वर्ग स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो बोले मैं इनको नहीं मारूंगा तो लोग कहेंगे दयालु, बोला नहीं अब कीर्ति में तुम्हारी कीर्ति भी नहीं होगी, ये जो तुम काम करने जा रहे हो इसमें ये आर्य लोग नहीं करते हैं, सभ्य लोग नहीं करते हैं, अच्छे लोग ये काम नहीं करते हैं, ये तो कायरों का काम है, ये स्वर्ग भी नहीं प्राप्त कराएगा और ये तेरे को कीर्ति भी नहीं देगा, तेरा नाम भी नहीं होगा, हृदय दुर्बल्यम तेरे हृदय की दुर्बलता है, ये दया नहीं है, तुच्छ क्षुद्रम हृदय दुर्बलम, ये तो तुच्छ हृदय की दुर्बलता, त्यक्तो तिष्ठ परम तपा, इसको छोड़ो उठो उठ जाओ। अर्जुन बैठ गया था ना भगवान ने, अब अर्जुन मैं सोच रहा था मैं अच्छा कह रहा हूं, भगवान तो कह रहे कि तुम्हें गलत हूं, अर्जुन हिल गया, लेकिन फिर भी अर्जुन तर्क दे रहा है, तर्क क्या देता है, पूजा रावरी सूदन, ये तो भीष्म द्रोण गुरु है ना मेरे, ये तो पूजा के लायक है, इनको फूल चढ़ाना चाहिए, इशु भी ही पड़ती हो तस्मा में, इनके ऊपर में तीर कैसे चलाऊं, आपका नाम अरिसूदन है ना, शत्रुओं को मारते हो ना और मेरे को अपने गुरु को मरवा रहे हो, अर्जुन बड़ा बुद्धि से बोल रहा है, अर्जुन जो शब्द बोल रहा है अरिसूदन, अरि कहते हैं शत्रु को, अपने शत्रुओं को मारा है ना, आप मुझे मेरे गुरुजनों को मरवा रहे हो, मेरे रिश्तेदारों को मरवा रहे हो, ये आप ठीक नहीं कह रहे हो। भगवान ने कहा मैंने मेरे मामे कंस को मारा था, आपको याद है ना, मैंने कहां छोड़ा था अपनों को, मामा जी था मेरा कंस, तो ऐसा नहीं है, जहां जरूरत पड़ती है, एक बार जरासंध 17 बार मथुरा में आक्रमण करके आया, उसको पकड़ के कृष्ण कहता है इसको मारूंगा, बलराम जी कहता नहीं नहीं हमारे मामा का सुसर है इसको मत मारो, कंस का सुसर है ना इसको मत मारो, मामा को मार दिया मामा का सुसर को मत मारो, बोला ऐसे क्यों बोलते हैं, बाद में बोलते हैं इसको छोड़ दो, बोले क्यों, मतलब कहां जाके हम बदमाशों को ढूंढेंगे, ये खुद ही इकट्ठा करके फिर ले आएगा फिर यहां मारेंगे ना, बार बार हम जाके दुश्मनों को कहां जाके ढूंढे बदमाशों को, अपने आप इकट्ठा करेगा फिर ले आएगा फिर यहां मार देंगे। और बलराम जी कहते नहीं नहीं अपने मामे का सुसर है इसको मत मारो, और जब समय आया तो उसी को अपने स्वयं ने मार दिया, भगवान ने उस जरासंध को मरवा दिया भीमा के द्वारा, भीमसेन के द्वारा। तो बात यह है अब अर्जुन थोड़े से और तर्क कर रहा है, क्या कह रहा है, गुरुओं की हत्या करूं, खून से मेरा राज मिलेगा, वो खून से रंगा हुआ होगा, वो मुझे नहीं चाहिए। अब भगवान चुप हो गए, ये एक दूसरी बुद्धिमानी है, एक बार किसी को थोड़ा सा झटका देके फिर ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, तो क्या होगा वो बोलता जाएगा, जितना उसके अंदर में बोलने की ताकत होगी सारा बोलेगा, फिर थक जाएगा अपने आप। अब अर्जुन थक गया बोल बोल के, भगवान ने इतना बोला, दो शेर को बोले फिर भगवान चुप करके बैठे देखने लगे। अर्जुन बोला गुरुन हत्वाई महानुभावान भैक्ष्यम अपीय लोके, मैं तो इस दुनिया में भीख मांग लूंगा, गुरुओं को नहीं मारूंगा, बुंजी भोगान रुधिर प्रदीगतान, अरे भोग जो होगा खून से संजा हुआ होगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बोलो और बोलो बोलो बोलना हो। तब अर्जुन कहता जयम वा अजय, आज पता नहीं हमारी विजय होगी कि हमारी हार होगी ये भी मुझे पता नहीं, फिर भगवान देख रहे। तब अर्जुन कहता कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मेरे स्वभाव के ऊपर कृपणता का दोष आ गया। भगवान बोलता क्या बोला, बोला मैं क्षत्रिय हूं, रणभूमि में युद्ध करना मेरा धर्म है, ये मेरा स्वभाव है, कोई रणभूमि में मुझे ललकारे तो मैं लड़ूंगा, लेकिन आज मेरे स्वभाव के ऊपर कृपणता, कृपण किसको कहते हैं, कंजूस, कंजूस का मतलब है पैसा हो खर्चा नहीं करे, भूखा मरे पैसे होते हुए उसको कंजूस बोलते हैं, और शास्त्र लिखते हैं मानव जन्म प्राप्त करने के बाद जो आत्मा का उद्धार नहीं करता है वो कृपण है, कंजूस वो है जो इंसान बनने के बाद भगवान को नहीं ढूंढता है, वो कृपण है। कृपण का उल्टा शब्द है ब्राह्मण। कृपण वो जो मानव शरीर में केवल संसार के भोगों में लगा रहे, और ब्राह्मण वो जो त्याग और तपस्या से भगवान को जाने। तो कृपण और ब्राह्मण दो शब्द हैं। आप सब लोगों को भगवत गीता ब्राह्मण बनाने के लिए सिखाई जा रही है, ताकि आप ब्राह्मण बन जाओ, कृपणता के दोष से मुक्त हो जाओ, भगवान को जानने के लिए आप में इच्छा पैदा हो। तो कृपणता का दोष, कार्पण्य दोष, उपहत। उपहत का मतलब मैं घर से आया था तो लड़ने के लिए आया था, अभी यहां आया है या अचानक आया है। कभी आदमी बोलता ना, मैं ठीक था, यहां आया था, इधर यहां आके मुझे बुखार आ गया। अर्जुन को बुखार कब आया? अर्जुन को बुखार आया पहले अध्याय में देखा है आपने, अर्जुन को बुखार आया है। बुखार में क्या होता है? चमड़ी जलती है और मुंह सूख जाता है। बुखार में ये होता है ना, मुखम च परिशुष्यते, मेरा मुख सूख रहा है। त्वक च परिदहयते, चमड़ी मेरी जल रही है। मन भ्रमते, मेरा मां और चक्कर आएगा, फिर बुखार में चक्कर आएगा। अर्जुन को आ गया बुखार। कैसा बुखार आया? अपने रिश्तेदारों को देखकर बुखार आ गया कि ये मर जाएंगे, रे राम राम, फिर मुझे मेरा क्या होगा। तो इसको बुखार बोलते हैं। इसलिए भगवान एक जगह कहते हैं, त्यक तो तिष्ट ज्वर, ये ज्वर बुखार को कहते ना, इस बुखार को छोड़ो, उठो। विगत ज्वर, विगत ज्वर, इस बुखार को निकाल के फेंक दो। योग युक्त तो भव अर्जुन, और योग में स्थित हो जाओ। तो अर्जुन कहता है, मेरे ऊपर कृपणता का दोष आया है। भगवान चुप करके खड़े हैं। धर्म समूढ़ चेता, धर्म के विषय में मैं मूढ़ हो गया हूं। मूढ़ पता है किसको कहते हैं? मूढ़ का मतलब है जिसको रास्ते का पता नहीं लगे। वो वैद्य लोग कहते हैं ना, जब स्त्री को बच्चा पैदा नहीं हो सकते तो बोलते हैं गर्भ मूढ़ हो गया। गर्भ मूढ़ हो गया का मतलब है कि रास्ता भूल गया, अब नहीं आ सकता, पेट काट के निकालना पड़ेगा, इसका सर टेढ़ा हो गया, अब ये गर्भ मूढ़ हो गया। मूढ़ का मतलब मार्ग से विचलित हो गया, अब मार्ग भ्रष्ट हो गया, अब दूसरी तरफ रास्ता है। धर्म विमूढ़, धर्म के रास्ते का मुझे पता ही नहीं लग रहा है, रुक गया, मूढ़ हो गया। धर्म विमूढ़ चेता, मेरा चित्त धर्म के विषय में बिल्कुल मूढ़ हो गया है, पता नहीं लग रहा है कहां जाऊं, इनको मारूं ये धर्म है या इनको नहीं मारूं ये धर्म है, ये मुझे पता नहीं लग रहा है। तो भगवान कहते हैं, फिर मैं क्या करूं? बोले, यत श्रेय सुनिश्चितम, जो श्रेय है वो निश्चित करके मुझे बताओ। देखो शास्त्र में दो शब्द है, प्रिय और श्रेय। प्रिय का मतलब मेरे लिए अच्छा है वो बताओ, श्रेय का मतलब शास्त्र किसको अच्छा कहता है, संसार किसको अच्छा कहता है, नीति किसको अच्छा कहती है, और मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपका सखा हूं, आप किसको अच्छा मानते हैं वो बताइए। श्रेय क्या है मेरा? प्रिय नहीं, श्रेय क्या है? अर्जुन डर नहीं रहा है कि मैं हार जाऊंगा, अर्जुन को यह डर नहीं है। इन सब योद्धाओं को भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, इनको अर्जुन अकेले ने विराट युद्ध में हराया था। आपको मालूम होगा अगर विराट युद्ध का, तो विराट युद्ध में अकेला अर्जुन, और भगवान ने एक जगह अर्जुन को देख के कहा, तुम आज बोलता है नहीं लड़ूंगा ना, उस दिन उत्तर कुमार ने कहा था नहीं लड़ूंगा, तब तुम सारथी थे ना, तुमने क्या किया था, उत्तर को सारथी बना के तुमने लड़ाई की थी ना, तो नहीं लड़ेगा तो मैं तेरे को सारथी कराऊंगा, मैं ऊपर बैठ जाऊंगा, क्या करोगे? तुमने ही तो ऐसे किया था, रास्ता तो तुमने पहले ये बताया ना सबको। विराट युद्ध में उत्तर कुमार अकेला लड़ने जा रहा था, लेकिन भीष्म के ध्वजा को देखा, बोले नहीं नहीं रे, इनके सामने मैं नहीं लड़ सकता, भागा। अर्जुन ने बोला, तुम नहीं लड़ सकता, घोड़े तो हांक सकता है ना, हांको घोड़े, मैं लड़ता हूं। तो भगवान ने देख के कहा, और फिर कहा, पारथ, पारथ इसलिए कहा अर्जुन को भगवान ने यहां कि आपको मालूम है अर्जुन, आपकी मां प्रथा ने एक चिट्ठी भेजी थी मेरे साथ, जब मैं हस्तनापुर शांति दूत बन के गया था ना, तब कुंती ने लिख के दिया था मुझे, अर्जुन और भीम को कहना, क्षित्राणी जिस दिन के लिए लड़कों को जन्म देती है वो दिन आ गया है। क्षत्रियानी दूध पिलाकर बच्चों को इसलिए पालती है कि धर्म के लिए युद्ध करें, वो दिन आ गया है। तुम नहीं लड़ोगे तो तेरी मां की बात को तुम टालोगे क्या? पार्थ तुम प्रथा का बेटा है ना, तुम नहीं लड़ेगा, तेरी मां ने तुमको क्या कहा है? तो ये भगवान उसको याद दिला रहे। यत श्रेयसो निश्चितम बुरी तन में, भगवान का क्यों बताऊं? अब अर्जुन कहता शिष्यस्ते अहम्, मैं आपका शिष्य हूं। भगवान भाई ये तो बोला काम पड़ता है तब सब शिष्य बन जाते हैं, गुरु बना देते हैं और फिर घर चले जाते हैं। बोला नहीं शादी मां मुझे शिक्षा दो, मैं ऐसे नाम का शिष्य नहीं बनना चाहता हूं, मेरे को शिक्षा दो, शादी मां मुझे समझाओ। भगवान के मैं क्यों समझाऊं? भीष्म पिता मेरे समझ रहे हो, तुम्हारा अपना दादा खड़ा है सामने, व्यास देव तुम्हारा दादा है उसके पास जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो समझने के लिए? त्वाम परपनम, मैं आपका पांव पकड़ता हूं। परपना का अर्थ होता है पांव पकड़ना, मैं आपका शरण लेता हूं, मैं आपका पांव पकड़ता हूं, मैं आपका शिष्य हूं। अभी मित्रता से मैंने देखा काम नहीं चल सकता, मित्र को समझाया जा सकता है, परामर्श दी जा सकती है, मशवरा दिया जा सकता है, एडवाइस दी, लेकिन मुझे मेरा अनुशासन करो, गुरु बन जाओ, मैं आपका शिष्य बनता हूं। शिष्य का शासन किया जाता है इसके ऊपर, आदेश दिया जाता है, अब मैं आपका शिष्य बन जाता हूं। और फिर देखो अर्जुन कितना होशियार है, बुद्धिमान है, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरण लेता हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। और संजय कहता है, अर्जुन ने कहा न योतस्यमिति गोविंद, गोविंद मैं आपका शिष्य हूं, जो आप कहेंगे वे करूंगा लेकिन लड़ाई नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अच्छा शिष्य मिला है, बाकी जो आप कहोगे वो करूंगा लेकिन लड़ाई नहीं करूंगा। मैं तो लड़ाई का ही तो कह रहा हूं और इसीलिए तुम शिष्य बन रहे हो। न योतस्यमिति गोविंद, गोविंद मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तब भगवान मुस्कुराए, बोला ये अच्छा शिष्य मिला है। और थोड़ा डांटा भगवान ने, सोचानंद सोचिस तुम प्रज्ञावादांश भाषसी गतासुन न गतासुन नानु सोचंती पंडित। अभी तो पंडितों जैसी बातें कर रहे थे, थोड़ी देर पहले कितने बड़े व्याख्यान दे रहे थे मुझे, और तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि रोना किसके लिए चाहिए? अरे इन शरीरों के लिए रो रहे हो, वैसे भी खत्म हो जाएंगे एक दिन, आत्मा का तो तुम्हें पता भी नहीं है। और भगवान ने अर्जुन को आत्म ज्ञान देना शुरू किया। 13वें-12वें श्लोक से दूसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान देना शुरू किया। क्या किया? आत्म ज्ञान, इसको बोलते हैं गुप्त ज्ञान। आत्म ज्ञान संसार में नहीं मिलता है, इसलिए गीता का नाम है ब्रह्म विद्या। अर्जुन को भगवान ने 12वें श्लोक से आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया। कब? जब अर्जुन शिष्य बना। जब तक किसी गुरु के शरण में नहीं जाते हैं ना, तब अर्जुन की तरह बहुत तर्क वितर्क करते हैं, बहुत बातें बताते रहते हैं। देखो ये इस शास्त्र में ऐसे लिखा है जी, इस शास्त्र में ऐसे लिखा है, वहां तो ये कह रहे हैं, नीति ये कह रही है, बहुत बातें लोग करते हैं। लेकिन गुरु बनाने के बाद शिक्षा शुरू होती है, एक रास्ता मिलता है, तब तक बहुत रास्तों की बातें होती। इसलिए भगवान अब अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देने शुरू किया। आत्मा का ध्यान देते देते अर्जुन को भगवान ने कहा आत्मा कभी मरता नहीं है, शरीर मरता है। अगर तुम मां समझते हो कि सब कुछ खत्म भी होता है तो फिर क्या हुआ? एक बिल्डिंग है उसको गिरा दिया, मिट्टी हो गई, फिर मिट्टी से दूसरी बिल्डिंग बन गई, इसमें रोने की क्या बात है? भी पुराना घर हो जाता है तो गिरा के दोबारा नया बना देते हैं ना, मिट्टी हो गई फिर दोबारा मिट्टी को कटा गया फिर घर बनाया, इसमें रोने की क्या बात है? तो अर्जुन ने कहा हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है ना, तो ठीक है मैं बैठता हूं समाधि में, आत्मा का ध्यान करता हूं। भगवान ने बोला आप, भगवान ने यहां से यू टर्न लिया, पलटा खाया, बोला क्षत्रिय हो, धर्म तुम्हारा है युद्ध करना, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। एकदम भगवान ने आत्मज्ञान से स्वधर्म पालन की बात करना शुरू की। पहले आत्मा का ज्ञान दिया, फिर स्वधर्म पालन, स्वधर्म अपि विचेक, तुम्हारे लिए स्वधर्म पालन करना जरूरी है। और क्षत्रिय के लिए युद्ध का मौका मिल जाए तो ब्राह्मण के यज्ञ के बराबर है, ये तो किस्मत से मिलता है, अपने आप स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। और ऐसा मौका मिला है अर्जुन आपको, इसको आप अगर गंवा दोगे तो तुम समझते हो कि तुम्हारे को ये कहेंगे कि तुम बड़ा दयालु हो, ये तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, ये जो महारथी खड़े हैं ना दुर्योधन और कर्ण और ये दुशासन और ये शकुनी, ये कहेंगे डर के मारे अर्जुन भयाद रणाद उपरतम मम शंते त्वाम महारथा, तुमको जो महारथी मानते हैं ना ये कहेंगे डर के मारे भाग गया। और जिस आदमी का सम्मान हो उसके लिए अपमान मौत से ज्यादा भयानक होता है, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से ज्यादा है। ये अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया था एक बार, कर्ण मरा नहीं है अभी तक, कर्ण के द्वारा युधिष्ठिर पराजित हो चुके हैं, हार चुके हैं। अर्जुन वापस आया, पता लगा युधिष्ठिर को घायल कर दिया कर्ण ने, तो अर्जुन को देखते बोला तुमने कर्ण को मार दिया? बोला नहीं महाराज, आपको देखने आया। बोला धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को। युधिष्ठिर महाराज ने कहा तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है, अभी तक कर्ण जिंदा है, तुम मेरे को देखने आयो? अब तो अर्जुन ने कहा मेरा ये प्रण किया हुआ है, मैंने ये वचन किया हुआ है, जो मेरे गांडीव को नंदा करेगा उसका मैं मृत्यु कर दूंगा, उसको मैं मार दूंगा, मेरा ये वचन है। अब तो अभी तलवार निकाल के बोलता है युधिष्ठिर महाराज को मारूंगा, अरे इसके लिए लड़ने के लिए आया है, उसी को राजा बनाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते ये क्या कर रहे हो? बोला मेरा वचन है। बोला तुम्हारा वचन क्या है? बोला जो मेरे गांडीव की निंदा करेगा उसको मैं मार दूंगा। बोला भले आदमी को बुरे शब्द कहना उसको मारने के बराबर है, अब तुम थोड़ा सा डांट दो इसको, बुरा कह दो युधिष्ठिर को, क्या अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया जुआ के अंदर, वो हो ना, अब तो अपमान हो गया। अब अर्जुन बोलता है मैं अपने आप को मारूंगा, मैंने अपराध कर दिया, अपने पिता समान भाई का अपमान किया। भगवान ने बोला तो जाओ क्या करेगा? बोला मैं अपने आप की आत्महत्या करूंगा। बोला मैं तुम्हारे को दूसरा रास्ता बताता हूं। बोला क्या? बोला अपनी प्रशंसा करो तुम्हारे लिए मौत के बराबर है, अपनी बढ़ाई करना अपना मौत के बराबर है। तुम बोलो मैं इतना बहादुर हूं, तुम मरे जाओगे अपने आप। भगवान युक्ति बता रहे थे। तो युधिष्ठिर को तो तुम गांडीव के युधिष्ठिर को अपमान किया था एक बार, तो अब तुम्हारा अपमान जब होगा वो तो मौत से ज्यादा भयानक होगा। इसलिए जहां आप 36वें श्लोक में हो तब ये बात हो रही है कि तुमको क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, और 37वें श्लोक में लिखा है जहां आपने छोड़ा है, वाच्यवादांश्च बहुम वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्त सामर्थ्यम ततो दुःखत्रम् नोकिम्। जो ये लोग जो तुम्हारी इतनी प्रशंसा करते हैं, ये जब तुम्हारे लिए बुरे शब्द कहेंगे कि हार के भाग क्या, बहुत बड़ा गीदड़ निकला, बड़ा शेर कह रहा था, तो तुम्हारे लिए मरने से ज्यादा कर। फिर भगवान कहते हत्वा वा प्राप्यसी स्वर्गम, अरे तुम मर गए तो स्वर्ग तो मिलेगा ना, जित्वा वा भोक्षम, और अगर जीत लिया महीम इस धरती का भोग करना, राजा बन जाना, तस्मादुतिष्ठ कौन्त्य युद्धाय कृत्य निश्चय, इसलिए आपने बोला ना मुझे निश्चय करके बताओ, मैं तुमको निश्चय करके बताऊंगा, युद्ध करो, तुम उठो युद्ध करो, हारोगे तो स्वर्ग में जाओगे, मर जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, और जीतोगे तो राजा बनोगे, दोनों तरफ तुम्हारे लिए तो राज ही राज है, सुखी सुखे, इसलिए उठ के तुमको युद्ध करना चाहिए। और फिर भगवान सिद्धांत बता के यहां कर्म योग स्वधर्म पालन का संदेश यहां 38वें श्लोक में समाप्त करते हैं। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्जस्व नैवं पापं वा पश्यसि। अर्जुन तुम कह रहे थे ना पाप लगेगा मेरे को शत्रुओं को अपने रिश्तेदारों को मारने से, सुख हो या दुख हो, हार हा या जीत हो, अपने कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता। दुख के कारण अपने काम को छोड़ना नहीं चाहिए, और सुख के लिए ही काम करूंगा ये भी निर्णय नहीं करना चाहिए कि मुझे लाभ होता है तो इसलिए मैं काम करता हूं। लाभ हो लाभ हो, लाभ हो या नहीं लाभ हो, हार हो या जीत हो, सुख या दुख हो, अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए, ये धर्म है। और फिर भगवान ने क्या बताया, पहले क्या बताया दूसरे अध्याय में, पहला अर्जुन ने अपने आप को शिष्य बनने के लिए तैयार किया, तब भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा का ज्ञान देने के बाद भगवान ने कहा अब तुम अपना कर्म करो, अपना काम करो, अच्छी तरह से काम करो। तो काम आदमी कब करता है सही नमूने, जब आत्मा का ज्ञान होगा तब वो अच्छी तरह से काम करेगा, नहीं तो वो काम करेगा अपने स्वार्थ के लिए। आत्मज्ञान के बाद परमार्थ के लिए काम करेगा। अब स्वार्थ से अर्जुन को निकाल के भगवान परमार्थ में लाए। अब 39वें श्लोक से भगवान तीसरी बात शुरू करते हैं। अब काम ही करना है ना, तो अब तुम काम करो बुद्धि योग से। अभी तक तुम अपनी बुद्धि से काम कर रहे थे, अब तुम बुद्धि योग से काम करो। बुद्धि और बुद्धि योग में बहुत अंतर है। बुद्धि भगवान ने सबको दिए दो टाइम की रोटी कमाने के लिए, ये तो सबको भगवान ने बुद्धि दी। पशु को भी इतनी बुद्धि दी है कि अपना खाने का वो भी रास्ता निकाल लेता है और खा ले दो टाइम के लिए खाने को, नहीं तो पशु को कुत्ता भी कहीं जाके दो रोटी खा के आ जाता है, गधा भी कहीं घास चर लेता है। तो इतनी बुद्धि तो चींटी को भी है कि वो जाके अपना एक दाना कहीं से खाने का ला के ले आके, शक्कर का खाना उसको भी दाना कहीं मीठा मिल जाता है। लेकिन भगवान आत्म ज्ञान के बाद बुद्धि योग की बात करते हैं, इसलिए 39वां श्लोक है। अभी तक मैंने आपको सांख्य योग की बात की। इस शब्द के ऊपर सामान्य लोग से गीताओं में दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। गीता महाभारत में भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से 43वें अध्याय तक है, उसमें किसी भी अध्याय का कोई नाम नहीं है। अध्याय 25, अध्याय 26, अध्याय 27 ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आचार्यों ने कोई विशेष शब्द को देखकर उस अध्याय का नाम रखा है और ये चल गया है, चल गया है, इसलिए उसके ऊपर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। जो चल रहा है वो चल रहा है। पहले अध्याय को विषाद योग कह दिया, दूसरे अध्याय को सांख्य योग कह दिया। तो सांख्य योग, तो अब भगवान कहते हैं अभी तक क्या कहते हैं, देखो एते हाँ एशाते अभिता सांख्य। अभी तक मैंने जो आपको सिखाया ना सांख्य, सांख्य का क्या अर्थ होता है, सांख्य का अर्थ होता है कि आपको कोई चीज मिली हुई दे दी जाए और उसको अलग अलग कहिए, तो आपको कपड़ा दे दिया जाए तो उसमें धागा निकाल के अलग करो कि भाई ये तो धागा का, ये काटन का धागा है और ये सिल्क का धागा है और ये नायलून है, सबको अलग अलग करके निकाल के रख दो। बोला ये तो खेत से रुई से बना हुआ है ये धागा वाला, ये रुई का धागा है, और ये तो कुकुन की रेशम है उसका बना हुआ है। तो इसको बोलते सांख्य का मतलब विश्लेषण करके हर एक चीज को अलग अलग करके रख दिया जाए। तो शरीर किस चीज का बना है उसको अलग रख दो, इसमें क्या क्या है, और पृथ्वी है निकाल दो, जल है निकाल दो, आयु है अग्नि है निकाल दो, वायु है निकाल दो, बाकी क्या बचा, आकाश निकाल दो, फिर क्या बच गया, इंद्रियां बच गई, इंद्रियों को अलग करो, फिर क्या बच गया, मन का इसको निकाल दो, फिर क्या है बुद्धि, इसको निकाल दो, फिर क्या है आत्मा, इसको निकाल दो, फिर क्या है, अरे इसके बाद एक आत्मा बच गया। इसको बोलते हैं सांख्य। विश्लेषण करके हर एक चीज को अलग अलग करके, ये खिचड़ी बनी हुई है इसका संख्या क्या है, चावल है इसमें, दाल है, आलू डाले हैं, गोभी डाली है, गाजर डाले हैं, पत्ता गोभी डाली है, नमक भी डाला हुआ है, थोड़ा इसमें काली मिर्ची भी डाली है। विश्लेषण का मतलब हर एक चीज को अलग करो, तो इसको बोलते हैं सांख्य। अभी तक अर्जुन मैंने आपको सांख्य योग बताया, अब क्या है बुद्धि योगम इमम शरणो, अब मैं आपको बुद्धि योग बताने जा रहा हूं। तो भगवान कहते हैं आत्मा का ज्ञान के बाद कर्म करना है, लेकिन अब कर्म जो करना है वो बुद्धि योग के द्वारा करना है। पहले कर्म बुद्धि से करते हैं, बुद्धि से जब कर्म करते हैं तो उसका फल भोगना पड़ता है, लेकिन बुद्धि योग से जब कर्म करते हैं तो उसका फल नहीं भोगना पड़ता है। तो बुद्धि योग उसकी भगवान चर्चा करें, और बुद्धि योग को 10वें अध्याय के 10वें श्लोक ने भगवान ने कहा है ददामी बुद्धि योगम, वो बुद्धि योग मैं देता हूं। किसको देता हूं, बोला जो मेरा भक्त होता है उसी को देता हूं, सबको नहीं देता। बुद्धि सबको देता हूं लेकिन बुद्धि योग केवल भक्तों को देता हूं, इसलिए अर्जुन तो मेरे भक्त हो इसलिए तुम्हारे को बुद्धि योग की बात बता रहा हूं। तो अब भगवान 39वें श्लोक में कहते हैं बुद्धि योगम, बुद्धि योगोत इमं शृणो बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अगर तुम बुद्धि योग से कर्म करोगे ना तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। केवल बुद्धि से काम करोगे तो कर्म के बंधन में फंस जाओगे, लेकिन बुद्धि योग से काम करोगे तो कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। तो बुद्धि योग से काम भी दूसरे। इसके बाद एक श्लोक भगवान ने कहा, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक हे कुरु नंदना, ये 40वां श्लोक है। ये बहुत बस 39वें के बाद बुद्धि योग शुरू हुआ और तब कहा व्यवसायात्मिका बुद्धि। हाँ नहीं नहीं, इसके बाद एक और श्लोक बीच में है, 40वां श्लोक। इसमें अर्जुन मानो अगर कहे कि बुद्धि योग तो कोई मुश्किल होगा, बोला कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी इसके ऊपर काम कर लोगे ना तो बड़ा से बड़ा लाभ है। थोड़ा भी अगर बुद्धि योग से काम करोगे, प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवाय पता है किसको कहते हैं? प्रत्यवाय का मतलब है अगर तुम गाड़ी सही नहीं चलाओगे रोड के ऊपर तो आपको क्या मिलेगा? 200 दिरहम का फाइन मिलेगा, उसको बोलते हैं प्रत्यवाय। तुमने सही नहीं काम किया तो तुम्हारे को दंड मिलेगा। लेकिन बुद्धि योग में तुम गलत, तुम्हारे को कभी भी दंड नहीं मिलेगा। प्रत्यवाय न विद्यते, यह शब्द है, नेहाभिकर्म नाशो अस्ति, नेहाभिकर्म नाशो अस्ति, प्रत्यवाय न विद्यते। बुद्धि योग से कभी कर्म करोगे ना तो वो कर्म का फल कभी नाश नहीं होगा, और उसमें नहीं करने का भी, गलत करने का भी कभी तुम्हारे को फाइन नहीं लगेगा, दंड नहीं लगेगा। और फिर भगवान सिद्धांत पर, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। थोड़ा सा भी कभी शुक्रवार को एक दिन जुम्मे को बैठकर हरे कृष्ण कीर्तन कर लिया ना, अल्प, इसको बोलते स्वल्पम अस्य, इस बुद्धि योग के लिए, भक्त बनने के लिए थोड़ा सा एक घंटे का कभी प्रयास कर लिया अगर, त्रायते महतो भयात, बड़े बहुत बड़े भय से तुम्हारे को बचा लेगा। और सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, तो उस मृत्यु के समय तुम्हारे को अचानक ये हरे कृष्ण शब्द उच्चारण रहा याद आ गया तो तुम बहुत बड़े भय से बच जाओगी। और इसके बाद जो श्लोक है, उस श्लोक को पढ़ने से प्रभुपाद महाराज ने उस श्लोक को पढ़ा, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का उसको टीका पढ़ा और ये इस्कान के नाम की संस्था की स्थापना की। तो इस्कान के भक्तों के लिए 41वां श्लोक दूसरे अध्याय का बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना, बहुशाखाय अनंतास बुद्धि अव्यवसायी नाम। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना, जो बुद्धि योग होती है ना वो, उसका लक्ष्य एक होता है। जिसकी शाखाएं बुद्धि की बहुत हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उसको भी नमस्कार करना है, उसको भी करना है, उसको भी करना है, उसको भी करना है, उसको भी करना है, ये हो गया बहुशाखा। बहुशाखा वाला जो है वो भटका हुआ है। जो एक ही जगह दृढ़ विश्वास किया है, गुरुजी ने कहा है भगवान कृष्ण की भक्त बनने से भगवान बुद्धि योग देंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इसके ऊपर दृढ़ विश्वास अगर है तो वो संसार में सफल हो जाए। ये प्रभुपाद ने पढ़ा कि गुरु के वचन के ऊपर विश्वास अगर पूर्ण है तो संसार में वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन बहुसागे अनंतास बुद्धि अव्यवसायी नाम। उसकी बुद्धि कारोबार, व्यवसाय का एक अर्थ है दुकानदारी, वो ध्यान से दुकानदारी करोगे तो लाभ होगा, लेकिन 10 जगह अपने आप को बांट के रखोगे तो काम ठीक नहीं होगा। इसका उदाहरण व्यवसाय आत्मिक बुद्धि का उदाहरण, एक बार द्रोणाचार्य गुरु को उसके बेटे अश्वत्थामा ने कहा कि मैं आपका बेटा हूं, आप अर्जुन को मुझसे ज्यादा सिखा रहे हैं एकांत में बैठ के कभी कभी। तो गुरुजी ने उत्तर नहीं दिया, बोला कुछ भी नहीं बोला। दूसरे दिन कहा कि आपकी आज परीक्षा है, और पेड़ के अंदर एक हरा तोता बांध दिया और कहा कि इस तोते की आंख में निशाना लगाओ। लेकिन नीचे पानी में देखकर तोते की आंख में निशाना मत लगाओ, मानो ऐसे। तो पहले युधिष्ठिर को बोला, आइए युधिष्ठिर जी आप एक काम कीजिए। युधिष्ठिर ने तैयार ऐसे तीर को तैयार किया, पूछा आप क्या देख रहे हो? बोला गुरुजी पेड़ दिख रहा है, पेड़ की डाली में तोता टांगा हुआ है और तोते की आंख दिख रही है, बोला ठीक है तुम छोड़ो अभी नहीं निशाना लगाओ, तीर रख दो, अश्वत्थामा आ जाओ तुम तैयार करो तीर को। अश्वत्थामा तीर को तैयार किया, बोला क्या दिख रहा है, बोला गुरुजी आपके चरण दिख रहे हैं और पेड़ की डाली में तोता और तोते की आंख, बोला रख दो। अर्जुन तुम आओ जरा निशाना लगाओ, अर्जुन ने निशाना लगाया, बोला क्या दिख रहा है, तोते की आंख केवल दिख रही है। तब बोला अश्वत्थामा को, इसको बोलते व्यवस्था है आत्मिक बुद्धि, जो निशाना है वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, तुम लोगों को 100 चीजें दिख रही है तुम्हारा निशाना कभी नहीं लगेगा। जिसको एक निशान है, केवल एक ही निशान दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा, वही जिंदगी में कामयाब होगा। इसलिए वो कहते हैं पात्यामी शरीर, या तो शरीर को यहीं मैं खत्म कर दूंगा, प्राप्यामी नहीं तो भगवान आपको प्राप्त करूंगा, ऐसा जो संकल्प करके बैठता है ना उसको भगवान उसी वक्त मिल जाते हैं। ये संकल्प इतना होना चाहिए, डू आर डाई, मैं ये करूंगा या मरूंगा। चेतन महाप्रभु की लीला में 21 घंटे की एक चेतन महाप्रभु की लीला है, उसका नाम है महाप्रकाश लीला, 7 पहर की लीला, 7, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, दिन रात में 8 पहर होते हैं। 7 पहर तक चेतना महाप्रभु महाभाव में थे, सब भक्तों को बुला रहे थे और उनको उनके साथ जो भी घटनाएं हुई थी जहां महाप्रभु उनके सहायता की थी, उनमें हरिदास को बुलाया, हरिदास तुम्हें मालूम है तुम्हारे को 21 मार्केटों में ले जाकर और कोड़े बरसा के मार रहे थे, मैं आया उधर सुदर्शन चक्र लेकर, मैं उनको मारना चाह रहा था, तुम प्रार्थना मुझे कर रहे थे। महाप्रभु ये बिचारों को बुद्धि नहीं है, जानते नहीं है, इनके ऊपर कृपा करो, इनको मत मारो। तो मैं उनको नहीं मारूं तो मैं आपकी कैसे रक्षा करूं, तो मैंने अपने आप को आपकी कमर के ऊपर पीठ के ऊपर ढक दिया था इसलिए आपको चोट नहीं लग रही थी। तब महाप्रभु ने अपना कपड़ा दूर करके, देखो ये मेरी पीठ के ऊपर उन कोड़ों के निशान जो वो तुमको मार रहे थे। तो ऐसे हर एक भक्त को महाप्रभु, तो उधर एक भक्त को महाप्रभु ने बुलाया नहीं, वो बाहर खड़ा था। सबने बोला ये बहुत अच्छा भक्त है, बुलाते क्यों नहीं हो, बुलाते नहीं हो महाप्रभु जी, बोला नहीं 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 वो उसका मैं देखना भी नहीं चाहता हूं, उसको मैं देखना भी नहीं जाता हूं, ये मुझे एक हाथ से हलवा खिलाता है दूसरे हाथ से चाकू मारता है, इसका मतलब मायावाद का प्रचार करता है, इसको मैं देखना नहीं चाहता हूं। तो सबने जाके बाहर उसको कहा, क्या नाम था उसका, नहीं छोटा हरिदास की बात, मुकुंद दत्ता को जाके कहा, तो सबने कहा, श्रीनिवास ने कहा नहीं बहुत अच्छा गाता है, बड़ा अच्छा भक्त है, बोला 100 जन्म तक नहीं उसको मैं मिलूंगा। तो बाहर पूछा मुकुंद ने, महाप्रभु क्या कह रहे हैं, बोला 100 जन्म तक नहीं मिलूंगा, बोला 100 जन्मों के बाद मिलेंगे ना, 100 जन्मों के बाद मिलेंगे, कौन सी बड़ी बात है 100 जन्मों की, ऐसे कीर्तन में मिलेंगे 100 जन्मों के बाद मिलेंगे, गौरंगा गौरंगा नाचने लगा। जैसे नाच रहा था महाप्रभु ने कहा इसको इधर बुलाओ, उसी वक्त 100 जन्म पूरे हो गए, उसी वक्त बुलाया कि आओ बैठो, और फिर कहा तुम्हारे गाने को मैं कैसे भूल सकता हूं, तुम इतना मधुर गाते हैं, अरे गाने वालों में तुम सब श्रेष्ठ मुकुंदा। तो उसको उस वक्त अगर वो कहा 100 जन्म, अरे कौन महाप्रभु की भक्ति करेगा, छोड़ा मैं जाता हूं अभी दुर्गा के पास, तकड़ी जल्दी मिल जाएगी। तो यहां भक्त लोग कभी 5 साल हरे नाम करने वाला, अभी कुछ नहीं हुआ, चलो यहां से फायदा नहीं है, कुछ और काम करते हैं। 100 जन्म कोई बात नहीं, मिलेंगे ना, मिलने का तो दृढ़ विश्वास है ना, इसको बोलते हैं व्यवस्था आत्मिक, उसी वक्त मिल गए, फिर दूर देरी नहीं लगी। तो ये दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके बाद भगवान जैसे थोड़ा आगे जाएंगे ना तो अर्जुन प्रश्न पूछेगा कि ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है, ऐसी बुद्धि आती कहां से है, जो आप कह रहे हैं ना बुद्धि योग, इसमें बुद्धि एकाग्र हो जाती है, कैसे आती है, फिर भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताएंगे। और फिर जिस स्थित प्रज्ञ नहीं है, जिसकी बुद्धि भटक क्यों जाती है, उसका कारण बताएंगे। और ऐसे ये दूसरा अध्याय समाप्त होगा, लेकिन दूसरे अध्याय में एक श्लोक 39वां श्लोक है, 39 नहीं 49, कौन सा? दूरेण है अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, जो भी है उस श्लोक के आधार पे तीसरे अध्याय में अर्जुन फिर प्रश्न पूछेगा, और फिर तीसरे अध्याय के बाद अर्जुन पूछता जाएगा, भगवान बता जाएंगे, ऐसे गीता आगे चलेगी। तो दूसरे अध्याय में तीन भाग हैं। पहले अर्जुन का अभी दुख चल रहा है, और अर्जुन ने अपने दुख के कारण, परेशानी के कारण भगवान को गुरु बना लिया, शिष्य बन गया। तो भगवान ने आत्म ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान के बाद भगवान ने स्वधर्म पालन की शिक्षा दी, फिर स्वधर्म बुद्धि योग से कैसे करें ताकि कर्म के बंधन में नहीं फंसे, बुद्धि योग की शिक्षा भगवान ने दी। और बुद्धि योग की शिक्षा दी तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि जो आदमी बुद्धि योग वाले स्थित प्रज्ञ हैं वो कैसे होते हैं, तो भगवान फिर उसका उत्तर देंगे। तो ऐसे ये अध्याय तीन चार भागों में बटा हुआ है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ समाप्त करते हैं, सबको कल काम करना है, आज की कथा यहाँ समाप्त। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो कथा को विराम, और जो फिर आपका जैसे प्रोग्राम होगा, कथा कीर्तन प्रसाद जो भी है, आनंद। मायावाद का मतलब है प्रसाद को सम्मान नहीं करना, प्रसाद भगवान के सम्मान है लेकिन प्रसाद को साधारण समझना मायावाद, प्रसाद को खाओ तो मायावाद से बच जाओगे। मायावाद का अर्थ है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका शरीर माया का होता है और उनके ऊपर माया का प्रभाव होता है। तो भगवान से के ऊपर अगर माया का प्रभाव है तो भगवान से माया ज्यादा शक्तिशाली होगी। इसलिए मायावाद का अर्थ है भगवान माया के प्रभाव में आते हैं और भगवान को वो माया के शरीर में आया हुआ अवतारी मानते हैं। लेकिन हम भगवान को कहते हैं भगवान सचित आनंद विग्रह में आते हैं, उनका शरीर माया का बना हुआ नहीं होता है, उनके शरीर में हांड मास नहीं होता है, वो सारे का सारा सचित आनंद है। जैसे आत्मा है, हमारी आत्मा इतनी है, ऐसे ही पूरी उस आत्मा जैसी बनी हुई, ऐसा पूरा भगवान का शरीर सचित आनंद विग्रह है। वो शरीर का अव्यय है, कभी उनाश नहीं होता है। भगवान स्वयं कहते हैं अजोपी सन्नव्य आत्मा, मैं अजन्मा हूं, मेरा शरीर अविनाशी है, आपके शरीर नाश होता है, मेरा शरीर नाश नहीं होता है, अव्य आत्मा। अजोपी सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन्न, मैं सारे प्राणियों का मालिक हूं, ईश्वर हूं, मेरी इच्छा होती है तो मैं योग माया के द्वारा प्रकट होता हूं। बोलो बेटा।
और कनिष्ठ भक्त ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो कनिष्ठ भक्त को क्या करना चाहिए?
कनिष्ठ भक्त केवल वो मूर्ति में ही भगवान को देखता है, उसी की पूजा करता रहता है, आदमी कोई आएगा तो उसको देखेगा भी नहीं।
अभी तो वो नहीं, जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शत्रु रूप से होते हैं, जैसे कि मक्खी मच्छर कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं, तो क्या हम उनको किस रूप में देखना चाहिए?
उसको तो मक्खी मच्छर ही देखेंगे, लेकिन उसके अंदर परमात्मा है, उसके अंदर परमात्मा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसमें परमात्मा होता है। हाँ,
लेकिन वो तो फिर शत्रु रूप से है ना,
थोड़ा सा तकलीफ देता है तो आपको रात को सोने नहीं देगा, जागे हुए तो भगवान का भजन करोगे, तुम्हारा मित्र है ना। एक संत बोलता था ये मच्छर मेरे मित्र है क्योंकि रात को सोने नहीं देते, मैं रात ही सारी रात जाग के भगवान का भजन करता हूँ। लेकिन ये शत्रु हमारे नहीं है, इसको बोलते हैं आदि भौतिक कलेश। ये शरीर जिसको मिला है ना, इसको दूसरे जीवों से कष्ट मिलेगा। मच्छर मक्खी तो ज्यादा आपके दुश्मन नहीं है, आपके सगे रिश्तेदार सबसे बड़े आपके दुश्मन है। इन्होंने अभी कभी आपको मारने का प्रबंध नहीं किया, लेकिन उसने आपको कभी सुख से जीने भी नहीं दिया है। आप देखें, इंसान बहुत हमारे ज्यादा दुश्मन है, मक्खी मच्छर इतने बड़े भी ज्यादा, सांप है, ये ऐसे जीव हैं जिनको, जिनकी जूनी को बोलते हैं क्रूर जूनी है। वो क्रूर जूनी में आए हैं बेचारे। आत्मा तो शत्रु नहीं है, परमात्मा शत्रु नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे बिजली है,
ये बिजली जो है ये हमारी शत्रु नहीं है। अभी देखो अच्छी हमारी मित्र है ना, साउंड सिस्टम में आई है तो आप इसकी आवाज सुन रहे हो, पखे में आ रही है तो ठंडी हवा दे रही है, तो हमारा शत्रु तो नहीं है। लेकिन बिजली में हाथ डालेंगे तो मर जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे आत्मा और जो उसके अंदर परमात्मा है वो हमारे शत्रु नहीं है, लेकिन जिस मशीन में वो आत्मा परमात्मा बैठे हैं वो मशीन बड़ी खतरनाक है। वो सांप की मशीन में बैठे हैं तो उसके नजदीक मत जाना, नहीं तो करंट लगेगा, काटेगा। तो उस मशीन को कभी कभी मारने में भी कोई हर्ज नहीं है, वो मशीन डिस्ट्रॉय कर दो। उसको दूध पिलाना चाहिए, उसको प्रसाद खिला के फिर हरे कृष्णा मंत्र जप कर फिर उसको राम नाम सत्य करना चाहिए, ताकि कम से कम अच्छी जूनी तो मिले। लेकिन प्रायः सफाई ठीक रखी जाएगी तो ये चीजें होंगी नहीं। क्या है कि सारा दिन आपको मजबूरी में काम करना है, बहुत थके हारे आते हो, अपने बिस्तर को भी साफ करने का टाइम नहीं मिलता है, तो खटमल बोलता है मैं ही जाके सोता हूं। तो सफाई होगी तो नहीं आएगा, सफाई हमारी कम होने के कारण मच्छर कट्टर कीटाणु ये सब आ जाते हैं। प्रायः मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी अवस्था आती है जहां आपकी भगवान की भक्ति में ये जीव रुकावट बन जाते हैं, तो प्रार्थना करके भगवान को अपने को बचाना। फिर एक भागवत में वसुदेव जी कहते हैं जब अपनी जान पे आ जाता है ना तो उसका बचाने के लिए सब प्रयास करना चाहिए, आखिरी तक भी प्रयास करना चाहिए अपनी जीवन को बचाने का।
जैसे आप जैसे बैठ के जाप कर रहे होते हैं तो ध्यान में होते हैं, इधर मच्छर काट रहा होता है सामने,
वो उस वक्त बताने आता है कि इस वक्त तुम्हारा ध्यान कहीं और है। वो याद कराने आता है कि जरा ठीक तरह से जाप करो। एक बार प्रभुपाद कहीं गए, बहुत मच्छर थे, प्रभुपाद बोला आपको मच्छर खाते हैं? बोला नहीं खाते हैं मेरे को यहाँ। बोला फिर आप शुद्ध भक्त है इसलिए नहीं खाते हैं? बोला हिंदुस्तान में मेरे को खाते हैं लेकिन आपके यहाँ नहीं खाते हैं। तो बेटा ये है तो मच्छर काटेगा, उसका काम ही काटना है। एक साधु था, कहीं से जा रहा था, पानी में बिच्छू गिरा हुआ था, ने बोला डूब जाएगा इसको निकालता हूँ, उसको निकाला, उसने काटा, उसको नीचे गिरा दिया। आगे गया फिर बोला अरे निकालता हूँ बेचारा मर जाएगा, फिर निकाला, फिर काटा, फिर फेंक दिया, फिर आगे गया, फिर बोला वो अपने काटने का आदत नहीं छोड़ता है तो मैं उसको, मैं दूसरों के बचाने की आदत क्यों छोड़ूं? जब बिच्छू जैसा नीच अपनी काटने की आदत नहीं छोड़ता है तो मैं साधु होकर दया की आदत क्यों छोड़ूं? दोबारा गया, उठाया, काटा, लेकिन उठा के बाहर निकाला, उसकी जिंदगी बचा दी। कहने का जब वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकते हैं तो हम अपनी दया की आदत को क्यों छोड़ें? जोर से हरे कृष्णा इतना जपो कि मच्छर भाग जाए, कीर्तन सुन के भजन भक्त बन जाए। जोर से बोलना चाहिए, इसलिए जोर से बोलते हैं कि मच्छरों का भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको काटता है तो आप कुछ भी नहीं करोगे ना, अपने आप परमात्मा अंदर में बैठे बैठा बोल दे तो आपका हाथ जाएगा मच्छर के सर के ऊपर सीधा। वो आपके बस में नहीं है, वो परमात्मा अंदर से कहता है कि इसको अभी इसका टाइम पूरा हो गया। आप कहते हैं जब मच्छर काटता है तो आप कुछ सोचते कुछ नहीं, ऐसे अपने आप हो जाता है, तो उसका पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्णा।
हम लोग तुलसी पंखी माला पहनते हैं, विशेष करके हम लोग दो और तीन पैस लगाते हैं, कोई एक पैस लगाते हैं उसको कुछ
उसका गला छोटा होगा। हरि गुरु वैष्णव, मैं अपनी विचार से कह रहा हूं, तीन का मतलब है हम जीवन में हरि गुरु वैष्णव तीनों की सेवा करेंगे, तीनों के दास हैं, हरि भगवान के, गुरु जी के और वैष्णव सबके दास हैं। तो तीन लगाता है जब भक्त, तो हरि गुरु वैष्णव तीनों की सेवा में लगता है। और एक करता है तो कच्चा होता है, बोला भगवान की सेवा करूंगा, बाकी गुरु अभी किया नहीं है, भगवान से डायरेक्ट बात कर लेता हूँ, वैष्णव को भगा दो जहां से मैं यहां बैठा हूं, तो एक वाला अभी कच्चा है। लेकिन माला डालनी चाहिए, फिर एक दो तीन बाद में देखेंगे, पहला होनी चाहिए कंठी माला, ये बहुत अच्छा है।
तो
तुलसी का माला पहनने से नहीं, तुलसी का माला पहना इसलिए पाप नहीं लगेगा, वो डीम खाएगा इसलिए पाप लगेगा। डीम और मच्छी खाएगा उसके लिए, इसलिए कर्म का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन कंठी माला पहनी हुई है तो उनका एक श्रद्धा होती है, लोग पहन लेते हैं। लेकिन गुरुजन जब कंठी माला देते हैं तब ये पहले अपने आप छुड़ाते हैं तब देते हैं। एक होता है अपने आप लेना और एक होता है गुरुजनों से मिलना, उन दोनों में अंतर है। तो वो अपने मन से पहना हुआ कंठी माला, तो उस कंठी माला का लाभ जरूर होगा। अचानक कहीं मानो कोई ऐसी अवस्था आई जहां मृत्यु नजर बहुत निकट आ गई और उसको याद आ गई आपकी, मेरा बेटा हरे कृष्णा का भक्त हो गया, अभी तक आया नहीं, मैं मर रहा हूं, तो हरे कृष्णा बोलेगा अचानक ऐसे ना, तो उस वक्त उसको लाभ हो जाएगा। और उसके बाद अगर नहीं खाएगा, उस बोलने के बाद खाने का टाइम नहीं मिला, तो फिर सब पापों से मुक्त हो जाएगा। एक बार भगवान का नाम लेने से पाप सब नाश हो जाते हैं, और दोबारा पाप नहीं करे उसके बाद और फिर मृत्यु आ जाए तो अजामिल की तरह उद्धार हो जाएगा। इसलिए आपका भक्त बनने से उनको ये होगा, वो हरे कृष्णा भक्त है, वो कभी कभी गाली भी देता होगा कि वो तो नहीं खाता है, हरे कृष्णा भक्त है, फिर भी हरे कृष्णा बोलेगा पीछे, उसका फायदा उसको मिल जाएगा। तो इसलिए उसको आप कुछ कह नहीं सकते हो, उनको कुछ नहीं कहो, उसके लिए भगवान को प्रार्थना करो कि हमारे माता पिता के ऊपर आप कृपा करो कि वो आपकी भक्ति में आगे बढ़े। उनको सिखाना आपका धर्म नहीं, आपके माता पिता है, आप उन्होंने आपको शरीर दिया है, उसके प्रति आपके लिए हीन भावना भी नहीं होनी चाहिए। ये शरीर आपको दिया है जिससे आप भक्ति कर रहे हो, तो इसलिए आपके लिए उनको सम्मान करना ये आपके शरीर का धर्म है। देव द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम सोचम शरीरम तप उच्चते, ये शरीर का तप है 17वें अध्याय में, माता पिता बड़े गुरु ब्राह्मण का चाहे सदाचार नहीं भी दिखे तो भी उनका सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान सुमति दे, और आप जब जाओ तो उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, लेकिन डांट के नहीं बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कहना चाहिए हम तुमसे बड़े हैं, हम भक्त बन रहे हैं, तुम माया में गिरे हुए, ऐसे नहीं कहना चाहिए। उनको विनती करनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, बहुत लाभ हो रहा है, देखो अब हम बहुत सादा जीवन बिता रहे हैं, मांस नहीं खा रहे हैं, मांस का कीमत बहुत बढ़ गया है, हम दाल सस्ती खाते हैं, हमारे कम खर्चे में काम चल जाता है, वो सिगरेट नहीं पीते हैं, हमारा पैसा बच जाता है, आपको ज्यादा भेजते हैं माता पिता के लिए, शराब भी नहीं पीते हैं, देखिए कितना लाभ हो रहा है। उसको ऐसे समझाओ जो भाषा उसको समझ आए, लेकिन उसको दुखी मत करना, उसको दुखी करोगे तो ठीक नहीं है। 20 साल लगेंगे आपको, वो लोग आपको साधु मानेंगे, अगर 20 साल तक आप भक्त बन गए तो फिर वो आपकी बात मानेंगे, उससे पहले वो आपको कहेंगे ये खराब हो गया। तो आप आस्ते जरा किया करो, उनका नींद मत डिस्टर्ब किया करो, उनका डिस्टर्ब नींद नहीं करना चाहिए। आप इसलिए मंगल आरती मत करो कि उनका नींद खराब करना है, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए मंगल आरती करो, तो बड़ा शांति से करो, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अपने बड़ों को हमेशा प्रणाम करके आशीर्वाद लेना ही चाहिए, हर हालत में आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़ों के पास झुक के आशीर्वाद लेना, ये आपके शरीर का धर्म है, इस धर्म का पालन करने में आपका लाभ ही होगा। और तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानीन, मान देने सबको मान देना है तो अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं देंगे, रिश्तेदारों को छोड़ के दूसरों को देना है क्या, ऐसे तो नहीं कह रहा है श्लोक, इसलिए उनको मान देना जरूरी है, सबको सम्मान देना चाहिए। उनके लिए क्या है, हमारी थोड़े से हम कच्चे भक्त बनते हैं, अभी पक्के नहीं होते हैं ना, तो हम उन सब की प्रति हमारे मन में बहुत द्वेष भाव और नफरत होती है, ये नीचे ये गिरे है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं रोजमाला करता हूं, मैं चार नियम का पालन करता हूं, ये हमारे लिए खतरनाक है और ये अच्छा नहीं है। इन ये हमारे करने से हमें निम्रता आनी चाहिए, हमको उनके लिए मन में दया का भाव होना चाहिए। अब से अपने से नीचे वालों के लिए मन में दया का भाव करो, हीन भाव मत रहो, ये कर्मी है, मटीरियलिस्टिक है, माया में गिरा हुआ है, ये कहने का आपको अधिकार नहीं है। किसी और को अधिकार होता है ये कहने का, आपको नहीं है। ये हमको गलती नहीं करनी चाहिए, ये हमको निम्रता से काम करना चाहिए। कभी कभी कहते हैं भक्ति करने वालों के लिए उदाहरण कभी देते हैं, जो स्त्री पर पुरुष से मित्रता करती है वो अपने घर में इतना अच्छी तरह से काम करती है किसी को शक नहीं हो और मित्र से मिलने जाती है। ऐसे भगवान के भक्तों को संसार के लोगों के सामने इतना अच्छा और इतना निम्र होकर रहना चाहिए, उनको शक भी नहीं लगे कि ये भगवान से भक्ति करने जाता है। अगर भगवान की हम भक्ति सही कर रहे हैं तो उनको पता भी नहीं लगना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उनके काम सबको ठीक तरह ऐसा करना चाहिए कि उनको अपराध नहीं, तो उनसे अपराध होता है। आपको मालूम है जब वो आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, आप भक्त हो तो उसको भक्त के अपराध लगेगा, इसलिए आप ऐसा उनको मौका नहीं दो कि एक और अपराध करके दुखी हो जिंदगी में। इसलिए आप अपनी भक्ति को बहुत निम्रता से करो, दिखावे के लिए मत करो, अपने अंदर को साफ करने के लिए करो। प्रायः हमसे बहुत अपराध इसलिए होते हैं कि हम अभी तक कच्चे होते हैं, लेकिन हम दूसरों सबको हमसे नीचा समझते हैं। जबकि महाप्रभु कहते हैं अपने तुम अपने आप को नीचा समझो, हम दूसरों को नीचा समझते हैं। अमान ही न मान दे रहे, सबको मान दो वो कह रहे, और हम अपने मान के लिए सब ड्रामा करते हैं। तो हमको थोड़ा सा सावधानी से भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों को उद्वेग नहीं करना चाहिए। ये 12वें अध्याय में भगवान कहते यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विज, उद्वेग का मतलब जैसे खाना खाते हैं नीचे जाना चाहिए ना, उल्टी हो जाए बार इसको उद्वेग करते कहते हैं कि हमारे को देखकर उनके विचार उल्टे हो जाएंगे, ये उद्वेग हो जाए। तो भक्त किसी का उद्वेग नहीं करता है, किसी को दुख नहीं देता है, किसी को उल्टा नहीं बोलने के लिए मजबूर करता है, तो ये भक्त के लक्षण है। अद्वैष्ट सर्वभूतानाम, सब प्राणियों से द्वेष रहित रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता है। हम द्वेष करेंगे तो हम भगवान कहता है वो मुझे प्रिय नहीं है जो द्वेष करता। अद्वैष्ट सर्वभूतानाम मैत्री करुणा, और करुणा करता है उनके ऊपर, दया करता है, उनसे द्वेष नहीं उनके ऊपर दया करता है। एवच निर्ममो, कोई ममता नहीं है, निरहंकार, कोई अपनी बड़ाई की उसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे भक्ति के लक्षणों को ठीक तरह धारण करेंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन होगा। हमें थोड़ा सा निम्र बनना चाहिए। माला जप करने के लिए गुरु का ना जरूरत नहीं है, लेकिन माला के जप को पवित्र करने के लिए गुरु का जरूरत है। अच्छा किया, क्या होता है कि भगवान का नाम लेने का सबको अधिकार है। भगवान का नाम लेना शुरू करने का मतलब है कि हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। आप ऐसे है कि जैसे एयरपोर्ट तक यहां से जाना है तो आप में से कोई टैक्सी में जाएगा, कोई बस में जाएगा, कोई कार में जाएगा, कोई पैसा नहीं है पैदल भी जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट के बाद आपको उड़ना है तो जहाज में चढ़ना पड़ेगा, तब फिर आपकी टैक्सी कार गाड़ी काम नहीं करेगी, तब आपको जहाज जरूरी है, वही उड़ेगा। तो भगवान को प्राप्त करना है, माला जपेंगे तो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर उड़ने के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके पास उड़ने की कला है जो हमारे पास नहीं है। वो हमारे जप को पवित्र कर देगा जिसमें हम आगे ऊपर बढ़ेंगे। तो एयरपोर्ट तक जाने के तो हमारे को सहायता करेगा ये माला, कैसे भी हम एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ऊपर उड़ने के लिए फिर गुरु की, क्योंकि इसमें अहंकार आएगा थोड़ी देर के बाद, माला देख के कोई आपका पांव छुएगा, कोई आपको दक्षिणा देगा, तब गुरु अगर नहीं होगा तो आपके अंदर अहंकार आना शुरू हो जाएगा, फिर आप नीचे गिरना शुरू हो जाओगे। फिर गुरु होगा तो आप कहेंगे नहीं मेरा नहीं है ये, आप जो मन में सम्मान कर रहे हो ना ये मेरे गुरु की वजह से है, तो आप उस वक्त गुरु को प्रार्थना करोगे, वो भार अपने ऊपर में ही उठाओगे, नहीं तो इस भार में खुद दब जाओगे। तो वो भार उस वक्त गुरुजनों को देना होता है, कोई माला हमको डालता है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हम तो इसके लायक नहीं है, लेकिन आपकी शिक्षा को देखकर गुरुजन ये हमें सम्मान दे रहे हैं, ये आपका सम्मान है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं लेकिन ये आपके लिए है। तो ये भाव अंदर में तब आता है निम्रता का, जब अपने से बड़े किसी के निर्देश में अपने भक्ति करेंगे, तो इसलिए उस वक्त जरूरत पड़ेगी। अभी तो काम चलाइए, एयरपोर्ट तक पहुंचिए, फिर उड़ने के लिए टिकट लेंगे। करते रहो मुख से,
तो उसमें अकाउंट हो जाएगा।
ड्यूटी तो अब देखिए ये समय के हिसाब से, एक भक्त था वृंदावन में, वो भक्त भगवान की लिए भोग बनाता था, सुबह 3 बजे जाता था किचन में, रात को 10 बजे बाहर आता था, सारा दिन भगवान की सेवा में था, और जब वहां होता था तो केवल भगवान का कीर्तन या भजन गाया करता था। तो एक दिन प्रभुपाद को, प्रभुपाद के सेक्रेटरी ने जाके उसको पूछा माला कहाँ है, जप नहीं करते हो, तो उसको कुछ बोला नहीं, जाके प्रभुपाद को, प्रभुपाद वो माला जप नहीं करता है। प्रभुपाद ने बोला मैं रोज सुनता हूँ वो 24 घंटे भगवान के रसोई बनाते हुए भगवान का कीर्तन कर रहा है। और फिर प्रभुपाद ने उसको देखा सेक्रेटरी, बोला तुम जप करते हो इसके ऊपर मेरे को शक है कि तुम करते हो कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन वो करता है, क्यों तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, और जब भगवान की सेवा कर रहा है तो मुख से राम राम चल कर ही रहा है। तो उसके लिए प्रभुपाद ने ऐसे कहा, और वो वृंदावन में अभी एक कुछ 6 महीने 12 महीने हुए उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो ऐसा भक्त होता है जो भगवान की सेवा करता है और जप नहीं कर सकता कोई बात नहीं, लेकिन हम दूसरे किसी की सेवा करते हैं तो हमारा ध्यान अगर जप में है तो उसका काम ठीक नहीं होगा, तो उसका काम ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी जप करने में लाभ ही है। तो गिनने के चक्कर में फिर जरूरी नहीं है पढ़ने का, कुछ करते रहो और भगवान आपको फिर समय भी निकाल के कुछ दे देगा, लेकिन वहां करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, उत्साह के साथ करना चाहिए, कहीं भी टाइम मिले करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते बस में काम में कहीं भी करो, अपने आप को जबर मतलब ऐसे भाव हो के मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूं। भगवान भक्त कॉन्शियस है, हम कृष्ण कॉन्शियस बनने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन भगवान भक्त कॉन्शियस ज्यादा है, वो कहता है ये मेरा नाम ले रहा है, तो वो हमारा ध्यान कर लेता है जब भी हम नाम लेते हैं। आप कहीं भी, अर्जुन ने कभी है माला लेके कार्य कृष्ण जप किया, बिल्कुल मिलेगा, स्वल्पम से धर्म से त्रायते महतो भयात, उसका फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अर्जुन ने कभी माला उठा के जप किया हुआ ये कहीं नहीं मिलता है, महाभारत में नहीं मिलता है, रामायण में नहीं, वो अपने भगवद गीता भागवत में नहीं मिलता है, लेकिन केवल भगवान के लिए काम किया है तो आज भी बड़े से बड़ा भक्त माना जाता है। उसने तीर चलाया भगवान के लिए, माला नहीं हलाई, तो भगवान के लिए काम करेगा तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम कलयुग के लोग हैं ना, ये काम पड़ता है तो भगवान का नाम जपता है, पान काम उतर जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए गुरुजनों ने कहा है कि कुछ टाइम भगवान के स्मरण का जरूर निकालो, ये हमारे को बाध्य किया गया है कि 2 घंटे कम से कम जप करो, ताकि हम ऐसे नहीं एक दिन 6 घंटे करें जब तकलीफ आ जाए, तो कोई नौकरी से जवाब मिले तो 12 घंटे जप करेंगे, और नौकरी मिल गई तो काम कर जप करना ही छोड़ दिया। इसलिए बोला नहीं भाई 2 घंटे तुम रोज करते रहो तो तेरी समस्याएं अपने आप दूर होती रहेंगी। तो ये हमारी बेईमानी जो मन में होती है उसको देखकर महात्माओं ने कहा है कि इनको कम से कम एक जगह पे पक्का तो करो कि इतना रोज करने की आदत ये पक्की रखें, ताकि ये आदत बन जाए इनकी, फिर अपने आप होता रहेगा 24 घंटे। हरे कृष्ण जपते रहो जहां जैसे जब भी हो, परेशान मत हो, दुखी मत हो, जहां काम पे हो तब जपते रहो मुख से, भगवान निश्चित रूप से आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण धन्यवाद। कितना 9 हुए 10 हुए, तो
ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कोई बात नहीं जी। गुप्त गुह्य ज्ञान, आत्मा के ज्ञान को गुप्त ज्ञान बोलते हैं। आत्मा और भगवान दोनों को जानकर और भगवान से संबंध स्थापित करने का मन में विचार आए तो उसको गुह्यतर ज्ञान बोलते हैं, और भगवान से प्रेम करते हैं उसको गुह्यतम ज्ञान बोलते हैं। तो तीन प्रकार का ज्ञान है। प्रायः लोगों को गुह्य ज्ञान तो है, आत्मा का ज्ञान बहुत से लोगों को है, लेकिन प्रभुपाद जी लिखे केवल आत्मा का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, इतना ज्ञान से काम चलेगा नहीं। ये आत्मा किसका है? भगवान का अंश है। ये हो गया थोड़ा और ज्यादा गुह्य ज्ञान। मैं भगवान का अंश हूं तो भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ये और थोड़ा ऊपर का ज्ञान हो गया। और जो मेरा भगवान के साथ संबंध है उस संबंध में प्रेम और सेवा करूं, ये गुह्यतम ज्ञान हो गया। तो ये तीन प्रकार का ज्ञान भगवत गीता में। दूसरे ज्ञान अध्याय के ज्ञान का नाम है गुह्य ज्ञान। सातवें और आठवें अध्याय में गुह्यतर ज्ञान है, नवें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान है। तो भगवान ने तीनों स्तर का ज्ञान दिया है, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। लेकिन गुह्यतम ज्ञान है भगवान का भक्त बनना, भगवान में मन लगा के रखना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान की पूजा करना। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कारो, ये गुह्यतम ज्ञान है, ये गुह्यतम ज्ञान। देखो दुनिया में कितने लोग इस दुनिया में हैं, दुनिया को छोड़ो, आप जहां रह रहे हैं दुबई में कितने लोग हैं? 15 लाख लोग हैं, 18 लाख संख्या है, उसमें से भक्त कितने होंगे? मैं कहता हूं 17 लाख में से 2000 भक्त होंगे, कितना परसेंटेज हुआ? हाँ कितना, कितना परसेंट हुआ? 17 मानो 17 लाख में 1700 भक्त हैं तो कितने हुआ, कितना परसेंटेज हुआ? 1% हो गया, 0.1% होगा। तो जरा देखो कि इतना कम परसेंटेज भक्त है जो दुर्लभ है इस दुनिया में, तो उस भक्तों से हम प्रेम और सेवा करें या उनको भी हम दुखी करें? कितने कम भक्त है इस दुनिया में, उन भक्तों के लिए हम सेवा करने का भाव मन में बनाएं। बहुत कम भक्त दुनिया में है, इसलिए वैष्णव भक्तों को देखने से हृदय प्रफुल्लित होना चाहिए, उनकी सेवा करने के लिए हृदय में भाव आने चाहिए, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। नाम अपराध में पहला नाम अपराध क्या है? भगवान के भक्तों की निंदा करना, इस अपराध से बचना चाहिए। और इस अपराध को महाप्रभु ने लिखा है मत्त हाथी का अपराध। भक्ति की लता बहुत नाजुक होती है, भक्ति की लता बहुत नाजुक होती है, और उस बाग में जिसमें भक्ति की लता है मस्त हाथी आए तो क्या लता का हाल होगा? भक्त का अपराध मस्त हाथी का अपराध है भक्ति के लिए। इसलिए भक्तों में जब तक हरि गुरु वैष्णव, मैंने बोला जब तक भक्तों के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा प्रेम और सेवा का भाव नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। वैष्णव भक्त एक बार, और भक्त कौन है? एक बार हरे कृष्णा बोलता है मुख से उसका आदर करो, हृदय से उसके लिए मन में अच्छा भाव रखो, जो हरिनाम दीक्षा लिया उसको दंडवत करो, ये रूप गोस्वामी सिद्धांत लिखते हैं, एक बार हरे कृष्णा कहता है उसके लिए आपके मन में आते हैं भगवान का नाम लिया, मेरे भगवान जिससे मैं प्रेम करने जा रहा हूं उसके लिए इसको इतना आदर है, उसके लिए हमारे मन में बहुत अच्छा भाव आना चाहिए, उसके लिए उसका सम्मान करना चाहिए। तो जो माला जप रहा है उसकी तो सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, उससे मैत्री रखनी चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, तो हम आगे बढ़ सकेंगे। संग चालो हरि बोलो, चेतना महाप्रभु कहते हैं संग चालो हरि बोलो। संग चालो का मतलब भक्त एक दूसरे से हाथ हाथ में मिलाकर चलो, एक दूसरे को धक्का मत दो, हाथ हाथ में दिलाकर चलो का मतलब सहारा दो। हमें मालूम है 3 साल पहले मायापुर में हम गंगा स्नान करने जा रहे थे, मेरे को बहुत कमर में दर्द था, मैं चल नहीं पा रहा था, तो भक्त जल्दी जा रहे थे, तो एक भक्त बहुत सीनियर प्रभुपाद शिष्य बोला महाप्रभु ने कहा है संग चलो हरि बोलो, छोड़ के नहीं चलना है, हम इसको साथ लेके चलना है हमारे को बोल। तो कैसे रिक्शा लाया उसके ऊपर अंदर बिठाया, अंदर से हमको गंगा तक साथ ले गए, तो उसको बोला साथ चलो, ऐसे नहीं बेटी नहीं चल सकता हम जाए स्नान करके वापस आए अपना काम करेंगे, लेकिन भक्त हमारा है किसी कारण से कमजोर है, कोई इस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया के अंदर सबके अंदर कुछ बुराइयां हैं, सबके अंदर कुछ त्रुटियां हैं, किसी की आदत ठीक नहीं होगी, कोई बोलना तो किसी का ठीक नहीं होगा, किसी को कोई बुराई, हर एक आदमी में कुछ न कुछ अवगुण होते ही हैं, कोई सब सवाए भगवान के और कोई पूर्ण नहीं है। तो दूसरे के अवगुण को मत देखो, उसके एक गुण को देखो कि ये भगवान का नाम जप रहा है। वैष्णो को वो महावैष्णो है, भगवान शिव तो वैष्णो नाम यथा शंभु है, उस भगवान शंकर को जाके कहना चाहिए आप भगवान विष्णु के इतने महान भक्त हुए हमारे ऊपर कृपा करो कि हम विष्णु का भक्त बने, ये जाके प्रार्थना करनी चाहिए उसको कि आप इतना महान वैष्णो हैं, हम आपके चरणों में बैठते हैं, कृपा करके हमको भगवान की भक्ति दीजिए, इस पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भगवान शंकर को ये जाके कहना है आप तो पी सकते हैं धतूरा, हमको भी कहीं से चर्श पिला दीजिए, भंग पीनी है आप कृपा करके प्रसाद दीजिए, ये पूजा मत कीजिए। वो पूजा करना ठीक है, जाओ प्रणाम करो, कहो महावैष्णव हो आप, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में, आप जिस भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं उसका थोड़ा सा कण का प्रसाद मेरे को दो, मैं भगवान की पूजा कर सकूं, बहुत अच्छा है, जाए करना चाहिए रोज, कोई आपत्ति नहीं। जय गुरुदेव हमारे मथुरा में बहुत हैं। बस 4 बजे उठ के आरती करता है तो कष्ट करता है, महाराज जी का माला करता तो सोया होता बेफिक्र। बोला हम फायदे के लिए जप नहीं कर रहे, पहले तो ये बोलो कि हम फायदे के लिए जप नहीं कर रहे, हम तपस्या कर रहे हैं, ये जप करना तपस्या है। नहीं बोलो फायदा क्या है, बोलो आप चलो मैं गुरु जी के आपके पास चलूं, फायदा क्या है उसे पूछो, फायदा क्या है, क्या फायदा क्या होगा बोलो भाई, मैं चलता हूँ गुरु जी के पास, फायदा क्या होगा पूछो, क्या फायदा क्या होगा पूछो उसे, क्या फायदा होगा, क्या फायदा बोलता है पहले सुन लो, क्या फायदा क्या होगा पूछो, क्या फायदा होगा, फायदे के लिए हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंतःकरण की शुद्धि करके भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, ये हम तपस्या कर रहे हैं। लेकिन देखो ये कलयुग है, इसमें बहुत से मत और पंथ हैं, इसलिए उनसे उलझना नहीं चाहिए, अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। बोल आपको ये ठीक लगता है आप वो करो, मुझे मेरी भक्ति करने दो, मैं शास्त्र के आधार के ऊपर भगवद गीता की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन जीना चाहता हूँ, आपको जिसका शास्त्र चाहिए उसका पढ़िए, भगवद गीता के आशय के चलना है तो मेरे साथ चलिए, नहीं तो जो आपको चाहिए वो कीजिए। टाइम खराब हो जाएगा। तो देखो एक हो, दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है सीखने के लिए, जैसे आप कर रहे हो ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए सीखने के लिए, लेकिन किसी को हराने के लिए क्वेश्चन करने में टाइम खराब नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी का चरित्र सही नहीं है, तुम्हारे को पैदा किया तुम बहुत शुद्ध हो गए। बोला यही चरित्र ब्रह्मा जी से गलती हुई कि तुमको पैदा कर दिया, ये बहुत बड़ी ब्रह्मा जी ने गलती कर दी। बोला हाँ उसकी लड़की के पीछे ब्रह्मा जी भाग रहा था, ये ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा बोला, जिन्होंने ये कहा था वो 3 बार असुर बने थे, जिन्होंने केवल ये कहा था ना, जिन्होंने ये कहा था ब्रह्मा अपनी बेटी के पीछे भाग रहा है, वो पहली बार हिरण्याकश के पोते बने और फिर दोबारा वही 6 कृष्ण से पहले देवकी के पुत्र बने षडगर्भ। ये चेतना महाप्रभु बताया कथा में, नित्यानंद के विषय में कोई कह रहा था कि नित्यानंद पान खाता है, रेशमी कपड़ा पहनता है, कैसा सन्यासी है, महाप्रभु ने कहा ऐसे महावैष्णव को आप नहीं पहचान सकते हो, ये अपराध आपको नरक में डाल देगा। मालूम है एक बार केवल ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे वो चिर देवता, 3 बार असुर जूने में गए, ये तो केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। मां देवकी ने कहा मैं अपने 6 बेटों को देखना चाहती हूँ, तुमसे पहले आए थे कृष्ण। कृष्ण गया बलि महाराज के पाताल लोग में, बलि महाराज ने कहा आइए, महाराज बोला मैं आया हूँ, वो 6 लड़के आपके पास है, वो तो मेरी माँ मांग रही है। उनको ले आया देवकी के हृदय में बहुत प्रेम उन बच्चों के लिए आया, माँ का दूध निकला, बच्चों ने दूध को पिया, कृष्ण का पिया हुआ स्तन उन्होंने पान किया, प्रसाद पाया तो उनका उद्धार हुआ। 3 जन्म उन्होंने लिए असुर जोनी में, बोलो केवल ब्रह्मा को देवताओं ने कहा था, 3 जन्म असुरों के लिए थे। अब तुम कहां जाओगे तुम जानो, मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता। जी तो 1 महीने जब आप जितने वहां जाते हो ना, बोलो मैं सिर्फ फलाहारी हूं, केवल फल खाऊंगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आप चेहरा भी गोल मटोल हो जाएगा। बोला मेरे को फल खिलाओ खिलाओ, 1 महीने के लिए मैं फलाहारी बाबा बन गया। कथा समाप्त। नहीं देखो लोगों के 100 मत है, लोग तो ब्रह्मा क्या, वो तो कहते भगवान श्री कृष्ण भी क्या है, वो तो आया था काल में, उसको भी मार दिया, क्या उसकी भक्ति करते। ऐसे तो बहुत लोग मिलेंगे कहने वाले, लेकिन शास्त्र के आधार के ऊपर चलना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहिए। जय गुरुदेव का ठीक है, उन लोगों का लिए वो मार्ग ठीक है, क्या कर सकते हैं आप। कुछ लोग रजोगुण में होते हैं, वो इंसान की पूजा करते हैं, वो रजोगुण में है, कुछ लाभ चाहते हैं संसार का। तो शुद्ध सतोगुण में भक्ति होती है जाकर। तो एक नहीं ऐसे बहुत है, गुरु जी हमारे भगवान है, आपने भगवान देखा नहीं है, गुरु जी को चल के देखो तो भाई, चलो देखते हैं गुरुजी को क्या दिखाएगा गुरुजी। अरे बोलो धुनी कान में तेरे गुरु की क्या, मैं टेप रिकॉर्ड 10 रुपए का लाऊंगा, मेरे कान में 10 दिन धुनी चलती रहेगी। धुनी के लिए इतनी छोटी मशीन लूंगा मैं, तेरे गुरु का टाइम क्यों खराब करूं उधर चल के, ये छोटी मशीन में तुम 24 घंटे धुनी सुनता रहो, इसमें कौन सा धुन सुनने में परेशानी है। अगर धुनी सुनने के लिए तो फिर तो जिसने ये 500 सोने वाले को गुरु बनाना चाहिए, जो सबके कान में धुनी चल रही है आजकल, देखा है सब चला के घूमते, तो धुनी तो उनके कान में चल रही है, तेरे कान में कौन सी धुनी चल रही है। दिल खुश कर रहे हैं सारे, धुनी चल रही है अंदर में, प्रकाश दिख रहा है तुम्हारे अंदर में, कितने बड़ी ज्योति दिख रही है। इससे तो बिजली वालों को मेहरबानी है, तुम दिन में काम करते हो, ये ज्योति बंद करे तेरी अंदर की ज्योति अपने आप बंद हो जाएगी, डंडा होगा नहीं खाओगे कहां से, तेरी ज्योति को थोड़ी थोड़ा काम चलाएगी। हाँ ये लाइट बिजली और भगवान अपनी बिजली बंद कर दे, ये सूरज का उगना बंद हो जाए तो तेरी वाली अंदर वाली ज्योति के ऊपर क्या दुनिया चलेगी क्या। ये टाइम खराब मत करो, बोलो ज्योति को छोड़ो नहीं तो जूता मारूंगा।
बहुत लोगों ने अनसंट बातें, ऐसे कान को दबाओगे तो तुम्हारे को ज्योति नजर आएगी, वो तो मैं आपकी आंखों को दबाऊंगा तो ज्योति नजर आ जाएगी, इसमें क्या गला दबाऊंगा तो और भगवान नजर आ जाएगा। सब टाइम खराब करते हैं, हरे कृष्ण जपो सुखी रहो। ये टाइम टेस्टेड हमारा बहुत बड़ा प्रयोग किया हुआ दुनिया के अंदर, हिप्पियों के ऊपर प्रभुपाद ने प्रयोग किया, जो मांसाहारी थे, जो नशा करते थे, शराब पीते थे, पर स्त्री गमन करते थे, उनको हरे कृष्ण मंत्र जपाने से बड़ा साधु बना दिया। बोला एक ऐसा आप दिखाओ गुरुदेव ने किसी एक पाश्चात्य देश का आदमी जिसको मालूम भी नहीं हो, जो मांसाहारी हो, जो शराब पीता हो, उसको साधु बना, एक तो दिखाओ। बोलो प्रभुपाद ने किसने भूखा, प्रभुपाद से किसने पूछा आपका चमत्कार क्या है महाराज, ये गुरुजी चमत्कार करते। बोला मेरा चमत्कार ये देखो, भक्त जो जिंदगी के अंदर सब पाप करते थे लेकिन केवल भगवान के नाम जपने से आज वैकुंठ से आए हुए ऐसे लगते हैं महात्मा। बोला एक तो दिखाओ महाराज जी ऐसा भक्त दुनिया के अंदर, जगत गुरु महाराज। अरे बोला जगत देखा है उसने? बोलो कभी एयरपोर्ट देखा है? जगत गया है कभी? जगत में कहां है जगत? ब्रह्मांड नायक, अरे ब्रह्मांड कहां के दूर, क्या देखा है कभी के तुमने? के क्या दुनिया का बाहर जगत गुरु, सबको पीछे जगत लगा देते हैं, वो बाहर वो अपने घर से भी नहीं गया है, जगत गुरु है वो। ये तो भाई कुछ भी शिष्य अपने गुरु के लिए कहे उनको नमस्कार कर दो, बस हो गया। बोलो सुखी रहो, तुम तुम्हारा गुरु हमारी जान छोड़ो। जब आपके पास थाली में आए तब हाथ जोड़े भगवान को बोलो जो आपने भेजा है मैं आपको अर्पण करता हूँ और खा लो, बस हो गया। हरे कृष्ण मंत्र जपो, भगवान हरे कृष्ण मंत्र में है, उसको प्रणाम कर लो, बस हो गया। वो क्या करता है आपसे? हाँ तो हाथ मिलाने से कौन सा फर्क पड़ता है? तो फिर क्या हुआ? जपमाला है तो ये जपमाला आपकी अभी यहाँ पड़ी, इसके ऊपर मक्खी बैठ जाएगी, मच्छर बैठ जाएगा, वो जपमाला पे बैठता है कि नहीं बैठता है? मक्खी बैठती है जपमाला पे? नहीं बैठती। मक्खी बैठ सकती है, एक आदमी हाथ लगाता है उसमें क्या परेशानी है? अरे बाबा इंसान है, दारू पी के आपसे हाथ मिला रहा है ना, तो आप उससे हाथ नहीं मिलाओ, गले मिलो, उससे गले मिलो, तो उससे प्रेम करो, उससे स्नेह करो, ताकि उसको तुम, उसको बोले तुम दारू पीछे दूर आओ, बोले तुम दूर हो, तुम्हारे को भी ऐसे ही बोलेगा ना, तुम उससे प्रेम करो, गले मिलो जाकर। प्रभुपाद जी ऐसे करते कि तुम सारे हिप्पी हो यहां से जाओ, या हम जब वैष्णव बन के तिलक लगाओगे तुमको हम तब आपको भगवद गीता बना, तो ये मोमेंट होती क्या? तब ये हरे कृष्ण मोमेंट होती क्या? आज हम भगवान का भजन करते क्या? अरे नशे में गिरे हुए लोगों को प्रभुपाद हाथ से रोटी बना के ऐसे खिलाया के खाओ, और जूठे बर्तन छोड़ के गए वो प्रभुपाद ने धोए, आप तो हाथ मिलाने के, वो तो जूठे उनके बर्तन प्रभुपाद जी धोया करते थे, वो खा के उठ के चले जाते थे, जूठे बर्तन स्वयं प्रभुपाद अपने हाथ से धोते थे। मांस जिस फ्रिज के अंदर रखा होता था, जिसके घर में प्रभुपाद पहले रहे उसकी फ्रिज में मांस होता था, हाँ अग्रवाल के घर में, लेकिन प्रभुपाद उसमें अपना भोजन स्वयं पचा के पका के खाते थे। तो ये हमारे को, हमको इसका मतलब उसके छूने से अगर मैं अपवित्र हो जाऊंगा, इसका मतलब शराब में ताकत मेरी माला से ज्यादा है क्या? मेरी माला के कारण वो पवित्र होना चाहिए ना, तो मैं उसको गले मिलूं ना ताकि वो सुधरे, मैं उससे भागूंगा, इसका मतलब तो शराब ताकत वाला है मुझसे। तो मेरा कहने का मतलब आप उदारता दिखाओ, आप संकीर्णता मत दिखाओ, लोग कैसे भी हैं आप प्रेम करोगे तो वो आपके निकट आएंगे, आप द्वेष करोगे तो वो भी आपसे द्वेष करेंगे, इससे लेकिन उनसे प्रेम नहीं करना है, जो आपको बदलने का प्रयास कर रहे हैं उनको नमस्कार करके प्रसाद दे दिया करो, बोलो हरे कृष्ण प्रसाद खाओ, उनका मुंह बंद करने का एक ही तरीका है। जब भी घर जाओ अच्छे मथुरा से पेड़े लाना, बोला जहां आपका गुरुदेव रहता है ना वहां से ये बड़े पेड़े लाया हूं, ये खाओ मुंह में डालना, तो बोलेगा नहीं प्रसाद खाता रहेगा, उनको चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका है प्रसाद उसके मुंह में डालो, भगवान उनको सुधारेगा। बोलो ये मथुरा से लाया हूं पेड़ा, खाओ। आपका गुरुदेव यहां रहता है ना मथुरा में, इसलिए रहता है कि भगवान कृष्ण ने उसके ऊपर कृपा की है, आप भी प्रसाद खाओ, बस प्रसाद दो और चुप। जहां बहस ज्यादा हो वहां प्रसाद साथ रखा कर उसको बोला अभी ये प्रसाद खाओ, अगली बार बात करेंगे। कभी भी दुश्मन मत बना के आओ, उसको छोड़ के आओ उधर आधे में, बोला बाद में बात कर लेंगे, आप प्रसाद खा लो। ऐसे करने से कभी न कभी सुधर के आएगा, लेकिन एक बार उसको आप भगा के आ गया तो फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए मित्रता छोड़ के आ जाए करो, डरो मत उससे, कुछ नहीं होगा उससे, उससे आपके माला को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मत चिंता करो। बस में जाते हुए करो, कोई बात नहीं। हाँ देखो, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप ये समझ लो कि आपके हाथ में कोई सोने का हार दे दे और आपको उसको ले जाने के लिए बोले कि यहां से कहीं ले जाओ, तो आप बीच में सोगे तो वो गिर जाएगा, तो कभी ऐसे कोई सोता है क्या? हाँ, जिस दिन तनख्वाह मिलती है उस दिन आपको नींद आती है क्या? हाथ में जब पैसा नोट होता है तब नींद नहीं आती है ना? क्यों नहीं आती है? उसमें मन है ना। तो ये भगवान का नाम जप रहे हैं उस वक्त हमको नींद आती है, इसका मतलब उसके लिए अभी हमारे को टेस्ट डेवलप नहीं हुई है, उससे हमें अभी तक प्रेम नहीं हुआ है असल में। तो आस्ते आस्ते प्रेम होगा तो उसमें कभी नींद नहीं आएगी, लेकिन आ जाए तो माला को रख के थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना चाहिए, जबरदस्ती नहीं है। माला नहीं होगा तो 24 घंटे से ज्यादा भगवान ने लिए किसी के लिए नहीं बनाया, सबके लिए 24 घंटे हैं। फिर जब उठो फ्रेश होके तब आधा घंटा माला जप लेना, कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त आड़ी टेढ़ी मत जपो, रेस्ट कर लो, शरीर को भी कष्ट नहीं देना है ज्यादा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण उसको अच्छा लगता है इसलिए लगा है, उसकी मर्जी, उसको बहुत अच्छा लगता है इसलिए लगा देता है। हरे कृष्णा बोलो, हो गया कथा समाप्त, बोलिए। बोलिए।